पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेरा परिवार जयपुर पहुंच गया है। वेद एक बच्ची को ढूंढ रहा है, माया निराश है और बलवंत वेद को लेकर चिंतित है। सुधीर रुचिका से शादी नहीं करना चाहता और माया वेद को नशीला पदार्थ पिलाने की योजना बना रही है। वेद को दो लड़कियां खतरों से बचाएंगी। वेद मानवी को ढूंढता है और बलवंत वेद की सुरक्षा के लिए एक आदमी को लगाता है। रीना देखती है कि वेदांत अपने ख्यालों में खोया है और माया की योजना पूरी नहीं हो सकी। इस अध्याय में वेदांत और माया वेद को नशीला पदार्थ देने की साजिश रचते हैं। रुचिका अपनी माँ से शादी न करने की गुहार लगाती है। वहीं वेद सुधीर और दीपक के साथ बैठा है और सुधीर शादी को लेकर परेशान है। लॉबी में वेद की मुलाकात अवनी से होती है और फिर मानवी अवनी को वेद के साथ देखती है, जिससे वो ठिठक जाती है। नाउ नेक्स्ट, चलो अभी चलते हैं, रीत ने कहा जो रीता उन लोगों के पास पहुंच चुकी थी। वेद ने रीता की तरफ देखते हुए पूछा, आप इनकी मॉम हैं? इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती या रीता कुछ कहती, अवनी ने जल्दी से बोल दिया, नहीं जी, ये तो मेरी मासी है, मेरी मॉम तो बाहर है, ये मेरी मॉम नहीं है। रीता ने थोड़ी झिझक के साथ वेद की तरफ देखते हुए कहा, सर तो मैं इसे ले जाऊं? वेद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ ले जाओ, हम लोग शाम को फिर मिलेंगे, वैसे तुम सगाई में आओगी ना? अवनी ने रीता के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, पता नहीं मामा क्या करेंगे, वैसे मैं मामा से कहूंगी। तुम मामा से कहना कि अंकल ने मुझे इनवाइट किया है, वेद ने धीरे से कहा। देखो ना, मेरे भाई की शादी है। उसने हल्का सा इशारा किया तो सुधीर तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, हम लोग तुम्हें इनवाइट कर ही रहे हैं, तुम्हें आना चाहिए। चारों को ही उसकी बात बहुत प्यारी लगी। अवनी ने हंसते हुए रीता को कहा, तो ठीक है मौसी, अब तो आपके सामने इनवाइट मिल गया है, मैं शाम को सगाई में जरूर आऊंगी, बस दुआ करना मामा कुछ और ना कहें और मुझे कमरे में बंद ना कर दें। उसकी मासूम सी मुस्कान सबको छू गई। वो हल्के हल्के कदमों से रीता के साथ बाहर चली गई। वेद की नजरें अनायास ही उसके पीछे टिक गईं। वो उसे बाहर की ओर जाते हुए देख रहा था। धीरे से उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, बहुत प्यारी है। जैसे ही अवनी बाहर आई, मानवी ने तुरंत उसकी तरफ बढ़कर कहा, कहाँ थी तुम अब तक, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अवनी ने मासूमियत से जवाब दिया, मॉम आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, मैं तो अंदर अंकल के पास थी, पूछ लो मौसी से, मौसी ही मुझे लेकर आई थी। मानवी ने गहरी सांस लेते हुए उसका माथा सहलाया, ठीक है लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। अवनी ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, अब नहीं मॉम, अंकल ने मुझे पहले ही खाना खिला दिया है और साथ में जूस भी पिला दिया, इसलिए मैं कुछ और नहीं खाने वाली, आप अपना काम करो, मैं वापस अंकल के पास जा रही हूँ। मानवी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। देखो बेटा, जिन लोगों को हम अच्छी तरह नहीं जानते उनके पास बार बार नहीं जाते, अभी मेरे पास ही बैठो, मैं काम करती हूँ और तुम डेकोरेशन में मेरी हेल्प कर लो, तुम्हें तो इसमें बहुत मजा आता है ना। मानवी जानती थी कि अवनी को बिजी कैसे रखना है। अवनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है मामा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। इतने में शेखर आया, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा करो तुम शशांक के साथ खेल लो, वो भी यहीं हैं। ठीक है अंकल, अवनी ने खुशी से कहा और शशांक का हाथ पकड़कर उसके साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद शेखर और मानवी काम में लगे हुए थे। मानवी लॉन के एक कोने में बैठी फूलों को धागे में पिरो रही थी, जिन्हें शाम की स्टेज डेकोरेशन में इस्तेमाल होना था। चेयर पर बैठी मानवी ने एक नज़र उठाकर देखा, अवनी और शशांक साथ साथ खेल रहे थे। मानवी के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से सोचा, दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। सच कहूँ, जब अवनी शशांक के साथ होती है तो मुझे इसकी फिक्र ही नहीं रहती, वो इसका बहुत ध्यान रखता है। उसकी आंखों में संतोष और सुकून उतर आया। शशांक पास खड़े होकर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसकी नज़र बार बार अवनी पर जाती और फिर मानवी की तरफ लौट आती। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मानवी तुम ये सब अकेले कैसे संभाल लेती हो, बहुत मुश्किल होता होगा ना, घर का काम भी और साथ में बच्चे को भी संभालना। मानवी ने हल्की सी थकी हुई मुस्कान दी, मुश्किल तो है लेकिन यही मेरी जिंदगी है, जब ये मेरे साथ होती है ना तो मुझे किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती। शेखर शशांक का पिता वहीं पास आकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में गहराई थी। सच कहूँ मानवी, अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं होता, मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, काम पर जाना पड़ता है तो मजबूरी में शशांक को साथ ले जाता हूँ, इससे उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। वो कुछ पल रुका फिर धीमे स्वर में बोला, बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है पर सच तो ये है कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता, उसे एक माँ की जरूरत है। मानवी उसकी बातें सुनकर चुप हो गई, उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। शेखर की आंखें कुछ और कह रही थीं। वो हल्के से बोला, अवनी को भी तो एक पिता की जरूरत होगी। उसने ये बात यूं ही कैजुअली कहने की कोशिश की, मगर उसके मन में हलचल थी। असल में वो अब मानवी में इंटरेस्ट लेने लगा था। शेखर खुद भी अकेला था, उसकी वाइफ उसे बहुत पहले छोड़ चुकी थी। अकेले अपने बेटे को पालना उसके लिए आसान नहीं था। उसके मन में कई बार ख्याल आता कि अगर उसके जीवन में कोई ऐसी औरत आ जाए जो न सिर्फ उसकी पत्नी बने बल्कि उसके बेटे की माँ भी बन सके तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। वो जानता था कि बहुत सी लड़कियां उसके साथ शादी करना चाहेंगी, उसकी अच्छी जॉब थी, नाम था, पैसा था और वो स्मार्ट और हैंडसम भी था, मगर शेखर को ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था जो सिर्फ दिखावे
दावे का हो। वो ऐसी औरत चाहती थी जो माँ बनने की जिम्मेदारी निभा सके, और जब वो मानवी को देखता तो उसे लगता शायद वही औरत उसकी तलाश का जवाब हो सकती है। उसकी नजरें अनजाने में मानवी पर टिक गईं। मानवी काम में लगी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और दृढ़ता थी, जैसे हर मुश्किल को मुस्कान के साथ झेल सकती हो। दोपहर को रीना की मॉम और उसकी छोटी बहन करीना वहां पहुंची। नौकरों ने सामान कमरे तक पहुंचाया, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ रीना की मॉम ने गंभीर लहजे में करीना से कहा, शादी का टाइम सबसे अच्छा मौका होता है करीना, यही वो वक्त है जब तुम आसानी से वेद को या फिर दीपक, सुधीर, किसी को भी अपने वश में कर सकती हो, और अगर तुम्हें मौका मिले वेद से शादी करने का तो समझो किस्मत खुल गई, वो इस घर का युवराज है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, और अगर वेद ना भी माने तो कम से कम इस घर के किसी न किसी बेटे से शादी करो, यहाँ की बहू बनकर ही तुम सेटल हो सकती हो। अपनी बहन से कोई उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारे लिए अपने देवर का रिश्ता लेकर आएगी, उसे तो अपना ही घर नहीं संभलता। उनकी आंखों में हल्की सी नाराजगी और इशारा साफ था, वो रीना की तरफ था। उन्हें मालूम था कि रीना और वेदांत के बीच काफी दूरियां थी। करीना ने मुस्कुराते हुए आंखों में आत्मविश्वास भरकर कहा, मामा आप फिक्र मत करो, देख लेना मैं इस घर में शादी करके ही सेटल हो जाऊंगी, पक्का। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक और यकीन था। वो कमरे के आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा निहारा, बालों को ठीक किया और होठों पर हल्का सा ग्लॉस लगाया। करीना इस मौके के लिए पूरी तैयारी करके आई थी, खूबसूरत कपड़े, गहने और एक ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसने ठान लिया हो कि इस घर में अपनी जगह बनाकर ही रहेगी। सानवी काम खत्म करके शाम को थकी थकी सी घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही उसने देखा रिया लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। रिया ने उसे देखते ही तुरंत कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कुछ ही देर में वो गर्मा गर्म चाय लेकर लौटी। लो ये पी लो, शायद इससे तुम्हारी थकान थोड़ी दूर हो जाएगी। सानवी ने ग्लास थामा और हल्की मुस्कान दी।
थैंक्स, सच में आज तो बहुत थक गई हूँ। दोनों सहेलियाँ चाय की चुस्कियों के साथ बातें करने लगीं। क्या शेखर वाकई मानवी के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है? क्या सचमुच दोनों शादी कर लेंगे? दोस्तों, अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपकी राय और रेटिंग ही मुझे आगे लिखने का हौसला देती है। फॉलो करना और शेयर करना मत भूलिएगा।